श्रोताओ नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक हैं और आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से विलाप गीत नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे, जिसके लेखक यिर्मयाह नबी हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है यरूशलेम के लिए विलाप। ये संपूर्ण पुस्तक एक ऐसा काव्य है जिसे लेखक ने मूल इब्रानी भाषा का साहित्यिक रूप दिया है। विलाप गीत की पुस्तक बड़ी कलात्मक रूप से सावधानी के साथ रची गई है। लेखक ने यरूशलेम नगर तथा परमेश्वर के मंदिर एवं विधि विधानों के विनाश और यहूदा के निवासियों के निर्वासन को देखकर उसका वर्णन किया है। इसमें यहोवा के प्रति यिर्मयाह के प्रेम एवं दुख का वर्णन भी निहित है। तो आइए श्रोताओ, विस्तार पूर्वक इस पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे, किंतु इससे पूर्व मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जलते चिराग गुल न हो, बुझते दिए जलाओ तुम, प्रेम की ज्योत कम न हो, गाओ ये गीत गाओ तुम, जलते चिराग
खुदा की हो औला, दुनिया को ये दिखाओ तुम। किसने ये तुमसे कह दिया, अपनों से ही प्यार करो। किसने ये तुमसे कह दिया, अपनों से ही प्यार करो, दुश्मन को भी है दोस्तो, दुश्मन को भी है दोस्तो, अपने गले लगाओ तुम।
जलते चिराग गुल न हो, बुझते
मसीह का हो बुलंद, उसका हो नाम सर बुलंद, झंडा मसीह का हो बुलंद, उसका हो नाम सर बुलंद।
सच्ची मसीही जवाब बनो, सच्चे मसीही जवाब बनो, नामे मसीह फैलाओ तुम।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि पिछले अध्ययन में हम यिर्मयाह नबी के पुस्तक से अध्ययन कर रहे थे और हमने पिछले अध्ययन में इसका समापन किया। आज हम अपने अध्ययन को एक नए पुस्तक से आरंभ करेंगे। पुस्तक का नाम है विलाप गीत। आज हम इसके परिचय और एक अध्याय से 12 पद तक का अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, इसके परिचय को देखें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। पिछले दिनों में आपने हम सबको यिर्मयाह के पुस्तक से अध्ययन करने का अवसर दिया और आज जब हम एक नए पुस्तक विलाप गीत से अध्ययन आरंभ करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि प्रत्येक जन जब आपके वचन को सुने तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, उनके जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। आप हम सबको सिखाएं, समझाएं, ताकि हम आपके वचन के अनुसार चल सकें। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के दबाव और तनाव में हैं, पारिवारिक समस्या में हैं। पिताजी, आप उन्हें अपनी शांति प्रदान करें, वचन के द्वारा उन्हें धैर्य दें, उनकी सहायता करें। आज के इस अध्ययन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम विलाप गीत की पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं, जो यिर्मयाह के भविष्यवाणियों की पुस्तक के बाद आती है। इसमें यिर्मयाह का दिल हमारे सामने खोला गया है। ये यिर्मयाह का विलाप है। पूर्व काल के एक महान टीकाकार डॉक्टर अलेक्जेंडर व्हाइट ने कहा था, यिर्मयाह के विलाप गीत के जैसा संपूर्ण संसार में अन्य कुछ नहीं है। प्रत्येक युग में प्रत्येक स्थान पर बहुत दुख है, परंतु ऐसे दुखी हृदय का प्रचारक लेखक दूसरा पैदा अभी तक नहीं हुआ है। मेरे मित्रों, यिर्मयाह ने यशयाह के राज्य काल में भविष्यवाणी की सेवा आरंभ की थी। दोनों ही युवा थे और अच्छे मित्र भी थे। यशयाह ने यहूदा में अंतिम धर्म सुधार किया था। धर्म सुधार का प्रभाव अनेकों पर पड़ा, परंतु वह मात्र बाहरी परिवर्तन था। यशयाह मगिद्दो की घाटी में मिस्र के राजा निको से युद्ध करते हुए मारा गया था। उसे उस युद्ध में जाने की आवश्यकता नहीं थी। यिर्मयाह अनुगामी चार दुष्ट राजाओं के राज्य काल में भविष्यवाणी करता रहा और ये चार राजा यहोआहाज, यहोयाकीम, यहोयाकीन और सिद्दिकिया, जो यहूदा का अंतिम राजा था, उसने अपनी प्रजा को परमेश्वर के निकट लाने के लिए संदेश सुनाया जो उनके लिए अत्यधिक कठोर था। वह यहूदा को पतन के मार्ग पर चलने से रोकने में कभी सफल ना हुआ। उसने यरूशलेम के ध्वंस होने को अपनी आंखों से देखा था। यरूशलेम को जलता देख उसकी आंखों से गर्म गर्म आंसू निकल रहे थे। मेरे मित्रों, विलाप गीत की पुस्तक के 5 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय एक शोक गीत है जो वर्णन से परे दुखद है। हम इसमें यर्मिया को यरूशलेम में खड़ा रोता हुआ देखते हैं। यह पुस्तक आंसुओं और दुखों से भरी हुई है। यह पीड़ा का जयगान है, दया से भरी हुई कविता है, भावनाओं का नीति वचन है। यह हृदय विदारक गीत है, दुख का भजन है, व्याथा का संगीत है और छानने की कहानी है। विलाप गीत बाइबल की विलाप दीवार है। विलाप गीत हमें यर्मिया के मन में ले चलते हैं। वह परमेश्वर का संदेश तो सुनाता था, परंतु उस संदेश से उसका ही दिल रोता था। वह कैसा अभागा और दुर्भाग्यशाली था। यदि आप उसके आंसुओं को परख नली में लेकर नमक की जांच करें तो भी आपको उसके दुखों का अनुमान नहीं होगा। उसे दुखी हृदय का भविष्यद्वक्ता कहा गया है। उसका जीवन दुख और दया से भरा हुआ था। उसका सिसकना एकाकी गीत था। एला व्हीलर विलकॉक्स ने एक तुकबंदी लिखी है, हंसो तो संसार तुम्हारे साथ हंसेगा, रो तो अकेले रोना पड़ेगा। यह दुखी पुराना संसार अपना आमोद प्रमोद तो करेगा, परंतु उसके अपने कष्ट बहुत हैं। जी हाँ मेरे मित्रों, आंसुओं को दुर्बलता का प्रतीक माना जाता है। रोना पौरुषहीन और चिल्लाना शिशु का माना जाता है। वर्षों पूर्व मैं जिस कलीसिया में रहता था वहां के कार्यालय की खिड़की के ठीक सामने हमारे ग्रीष्मकालीन बाइबल स्कूल का मैदान था। एक बच्चा अपनी छोटी बहन को भी ले आया और उसे उसकी चौकसी करते देखना एक बड़ा रोचक दृश्य था। दोनों ही छोटे थे, परंतु वह उसके चारों ओर मंडराता रहता था। एक दिन वह सड़क पर गिर गई और उसका घुटना छिल गया। वह रोने लगी। वह उससे साहस बंधाने की बातें करने लगा। ओह मत रो, कुछ नहीं हुआ है। रोती तो औरतें हैं। मैं नहीं जानता कि वह अपनी बहन को क्या समझाता था, परंतु वह सफल हुआ और बच्ची चुप हो गई। यर्मिया का हृदय स्त्रीयोचित था। वह बहुत संवेदनशील था। वह विश्वास योग्य था। वह सहानुभूति पूर्ण था। उसका हृदय एक माँ के समान कोमल था। परंतु उसने बाइबल का सबसे कठोर संदेश सुनाया है। जी हाँ, उसने यरूशलेम के विनाश की घोषणा की। उसने दंड की भविष्यवाणी की। उसने लोगों को प्रेरित किया कि नबूकदनेस्सर के अधीन हो जाएं। उसके संदेश ने उसे हर प्रकार की परेशानियों में डाल दिया, फिर भी वह पीछे नहीं हटा। मेरे मित्रों, अब यदि आप होते तो ऐसा कठोर निरशंस संदेश सुनाने के लिए कैसे मनुष्य को आप चुनते? निश्चय ही आप एक हिटलर जैसे मनुष्य को चुनते, न कि किसी स्त्रीयोचित अर्थात स्त्रियों को जैसा हृदय रखने वाला पुरुष को। परंतु परमेश्वर ने ऐसे ही मनुष्य को चुना। किसी ने कहा है कि नरक के बारे में प्रचार करने के लिए केवल डीएल मोदी ही एक मनुष्य है। उनसे पूछा गया कि वह ऐसा किस आधार पर कहते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि वह अपनी वाणी में आंसू के साथ प्रचार करते हैं। परमेश्वर को आज भी ऐसे ही मनुष्यों की आवश्यकता है। अधिकांश प्रचारक अपने संदेश से भावनात्मक नहीं होते हैं। मेरे मित्रों, एक प्राचीन युग के मंच कलाकार डेविड गरिक ने एक प्रचारक की कहानी सुनाई। वह प्रचारक सड़क पर प्रचार कर रहा था। वह भीड़ के पीछे खड़े होकर सुनने लगा और आकर्षित हो धीरे धीरे उसके निकट पहुंच गया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वहां एक स्त्री जो उसका प्रचार सुन रही थी उंगली उठाकर उससे कहा, मैं सुबह 7 बजे जब आपने प्रचार आरंभ किया था तब से आपके पीछे पीछे आपका प्रचार सुन रही हूं। आपने 5 बार सड़कों पर प्रचार किया है और मैं 5 बार आपके आंसुओं से भीग गई हूं। आप रोते क्यों हैं? वह अंग्रेजी नाटकों का हास्य कलाकार था जॉर्ज व्हाइटफील्ड। डेविड ने कहा कि उसने जॉर्ज को सुना और उसके मनोवेग को देखा, उसकी निष्ठा को देखा। उसके कहने का अर्थ था कि मनुष्य मसीह के बिना मृतक है। मैं उसे सुनता रहा और वह उस स्थान पर आया जब वह और कुछ न कह पाया। मेरे प्रियो, उसने अपने हाथ उठाए और गर्जन की सी आवाज में अंतिम शब्द कहा, ओह। जब उसने ओह कहा तब श्रोता पवित्र आत्मा के समक्ष ऐसे झुक गए जैसे हवा में मक्का का खेत। डेविड ने कहा, यदि मैं उसकी तरह ओह कह पाऊं तो मैं अपने हाथ सोने के सिक्कों से भर दूं, मैं संसार का सबसे बड़ा अभिनेता बन जाऊंगा। परंतु अंतर केवल यह था कि वह निष्ठापूर्वक कह रहा था, वह अभिनय नहीं कर रहा था। यर्मिया भी ऐसा ही एक प्रचारक था। मेरे मित्रों, मुझे खेद है कि हमारी आज की पीढ़ी की भावनाएं नहीं हैं, उनमें इस खोए हुए संसार के लिए मनोवेग नहीं है, परमेश्वर के वचन के प्रचार का बोझ सही रीति से नहीं है, नैतिकता और उत्तरदायित्व के ऊंचे बोध पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। कुछ वर्ष पूर्व रीडर्स डाइजेस्ट पत्रिका में युवाओं के लिए एक लेख था। उस लेखक के अनुसार जीवन में सफलता की सर्वोत्तम संभावना के लिए हमें अपना मन पसंद कार्य करना चाहिए जो हमारी योग्यताओं और हमारे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति को पूर्ण रूपेण उजागर करता है। यदि यर्मिया उस लेख को पढ़कर उसका पालन करता तो वह किसी और काम में होता, परंतु वह कह पाया कि वह परमेश्वर के वचन का आनंद लेता है। यर्मिया की पुस्तक 15 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। वह कैसा अद्भुत मनुष्य था। मेरे मित्रों, आज का युवा वर्ग जो प्रशिक्षित है मसीही सेवा में भी केवल घड़ी देखने की नौकरी करना चाहते हैं कि फिर घर जाकर टीवी देखें, बाकी सब कुछ भूल जाएं। वे अपनी भावनाओं और मनोवेग को सुरक्षित रखे हुए हैं और परमेश्वर के वचन के प्रसारण के इच्छुक ही नहीं होते हैं। मैं यर्मिया को समझ नहीं पाता हूं, परंतु मैं उसे सराहता हूं और सिर आंखों पर रखता हूं। श्रीमती एलिजाबेथ कुक ने उसके बारे में लिखा, एक स्त्री का हृदय कोमल, तत्पर एवं जोश भरा, परंतु संकल्प और साहस में पुरुष का हृदय। उसकी वीणा विचित्र दयनीय गीत पर सधी थी, तथापि कर्मठता की समय की पुकार क्रोध की आंधी नहीं सिंहासन और वेदी से उसकी आत्मा निरस्त थी। उसका निराशजनक युद्ध लंबा और घमासान था। यह यर्मिया था जो एक दुखी मनुष्य था। यर्मिया हमें यरूशलेम पर रोने वाले एक और मनुष्य का स्मरण करवाता है, परंतु अंतर केवल यह है कि यर्मिया ध्वंस मंदिर और उजड़े यरूशलेम को देखकर रो रहा है। यीशु 6 शताब्दी बाद यरूशलेम पर रोया था क्योंकि वह उसका भविष्य देख सकता था कि उसका क्या होगा। यर्मिया के लिए यरूशलेम का विनाश इतिहास की घटना थी, यीशु के लिए यरूशलेम का विनाश भावी घटना थी। मेरे मित्रों, विलाप गीत का मुख्य पद यरूशलेम के विनाश का कारण प्रकट करता है। विलाप गीत एक अध्याय उसके 18 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा सच्चाई पर है क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। हे सब लोग सुनो और मेरी पीड़ा को देखो, मेरे कुमार और कुमारियां बंधुआई में चली गई हैं। मेरे मित्रों, यहां पर हम इस प्रकार से विलाप गीत के परिचय को देखते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और विलाप गीत उसके अध्याय एक पर अध्ययन करेंगे, जिसका विषय है शोक गीत एक। जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें 5 अध्याय हैं और हर एक अध्याय एक शोक गीत है। विलाप गीत का पहला शोक गीत दुखद सुर पर आरंभ होता है। विलाप गीत की पुस्तक एक अध्याय उसके एक पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, जो नगरी लोगों से भरपूर थी वह अब कैसी अकेली बैठी हुई है, वह क्यों एक विधवा के समान बन गई। वह जो जातियों की दृष्टि में महान और प्रांतों में रानी थी, अब क्यों कर देने वाली हो गई है। मेरे मित्रों, महान यरूशलेम का पतन हो गया है, इसका क्या स्पष्टीकरण है? यर्मिया 2 महत्वपूर्ण बातें बताता है जो हमें कारण समझने में सहायक होंगी। आइए हम पढ़ें विलाप गीत की पुस्तक एक अध्याय उसके 8 पद। लिखा है, यरूशलेम ने बड़ा पाप किया, इसलिए वह अशुद्ध स्त्री सी हो गई है। जितने उसका आदर करते थे वे उसका निरादर करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी नंगाई देखी है। हाँ, वह कराहती हुई मुंह फेर लेती है। यरूशलेम ने बड़ा पाप किया, यह उसके पतन का पहला स्पष्टीकरण है। उसकी नग्नता प्रकट हो गई। मित्रों, यह कैसा दृश्य है जो यरूशलेम की है। विलाप गीत की पुस्तक एक अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, हे सब बटोहियों, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं? दृष्टि करके देखो, क्या मेरे दुख से बढ़कर कोई और पीड़ा है जो यहोवा ने अपने क्रोध के दिन मुझ पर डाल दी है। मेरे प्रियो, मनुष्य आज परमेश्वर के प्रचंड प्रकोप के बारे में सुनना नहीं चाहता है। सुसमाचार के प्रचार में यह पक्ष सदा ही अनदेखा किया जाता है। मैं यह सुसमाचार कलीसियाओं की टीवी प्रचार कार्यक्रमों में विशेष करके देखता हूँ। एक क्रिसमस कार्यक्रम में मैं यह देख रहा था कि उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु का जन्म कुंवारी से हुआ था, वह देहधारी परमेश्वर था। मुझे बड़ा आनंद आया, परंतु वह कार्यक्रम सुसमाचार का उपहास था, क्योंकि उनका कहना था कि प्रभु यीशु हमें नया व्यक्तित्व देने के लिए आया था, शांति और प्रेम लाया था। वह संदेश शांति और समझौते का संदेश था। उनका तर्क होता है कि वे संसार के मनुष्य तक पहुंचना चाहते हैं। यर्मिया भी खोए हुओं तक पहुंचना चाहता था, परंतु वह सफल नहीं हुआ। परंतु वह परमेश्वर का संदेश जैसा परमेश्वर उसे देता था, वैसा ही वह उन मनुष्यों में पहुंचाता था। परमेश्वर ने यहूदा को उसके पाप का दंड दिया और वह आज भी पाप का दंड देता है। मेरे प्रिय मित्रों, यहां पर हम देखते हैं विलाप गीत की पुस्तक में यर्मिया के विलाप के बारे में, जो एक शोक गीत है। परमेश्वर के लोग परमेश्वर से अलग हो गए। यर्मिया परमेश्वर का वचन लोगों तक लेकर के गया, ताकि उन्हें चेतावनी दे कि परमेश्वर उनके जीवन से क्या चाहता है, ताकि वे पाप से बच जाएं, उस भयानक दंड से बच जाएं। परंतु उन्होंने अपने मनों को नहीं फिराया और इसका परिणाम यह हुआ कि यरूशलेम नाश हुआ, अर्थात लोग बंधुआई में चले गए। जी हां, परमेश्वर आज भी मुझे और आपको, हर एक मनुष्य को अवसर देता है, ताकि हम अपने मनों को पाप से फिराकर परमेश्वर की ओर आ जाएं। हम देखते हैं कि परमेश्वर न्यायी है, वह किसी भी व्यक्ति को जो पाप करता है बिना दंड दिए नहीं छोड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर आज भी पाप का दंड देता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। मेरे प्रियो, यदि आज आप पापमय जीवन जी रहे हैं तो आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन में इस बात को जान ले कि परमेश्वर आपके पाप का दंड आपको अवश्य देगा, इससे पहले कि आपके परिवार के लोग, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपके प्रियजन आपके उस पाप को जान जाएं। आप अपने मन को फिरा लें, परमेश्वर के पास आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें हमारे सब अधर्म से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, वह आपके पापों को क्षमा कर सकता है। इसराइलियों ने उसकी बातों को नहीं सुना। यदि उन्होंने सुना होता तो परमेश्वर उन्हें उनके राज्य में रहने देता। आज आपके लिए मौका है मेरे मित्रों, आइए इस विलाप गीत के द्वारा से हम अपने जीवन को जांचें और परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को लाएं और कहें कि प्रभु, मैं बदलना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में पापों से छुटकारा पाना चाहता हूं, आप मेरी मदद करें। जी हां, जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। अगले अध्ययन में हम इसके आगे के अध्ययन को जारी रखेंगे। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद। बीते क्षणों में संग रहा है, अभी है मेरे साथ। आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद। बीते क्षणों में संग रहा है, अभी है मेरे।